Dada, today I was talking to Maria, and she told me that she does not doubt the existence of paradise, but she said that for me it is very difficult to conceive a place that wherein I will have no disadvantages, no limitations. She said the reason as to why I think so could be that I am very habitual. I have become very habitual to living a life with limitations and disadvantages and misery and pain. So that's the reason why, according to her, paradise had become inconceivable.
ये क्वेश्चन अपने आप में तो एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन दिखाई पड़ता है, लेकिन लॉजिकली इट इज नॉट ट्रू। इसलिए कि साइंस में ये बात मान ली गई है कि एनीथिंग दैट इज पॉसिबल थ्योरेटिकली इज ऑल्सो पॉसिबल प्रैक्टिकली। सारी साइंस इसी पर बेस करती है। इस प्रिंसिपल पर ना माया सारी साइंस खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारी साइंस जो है थ्योरेटिकल मॉडल पर चल रही है। जैसे एटम के अंदर माना जाता है कि तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये थ्योरेटिकल मॉडल है, वो कंसीवेबल नहीं है। एक थ्योरेटिकल मॉडल ही की वजह से मानते हैं कि एटम जो है वो कंसिस्ट करता है दो ऐसी वेव्स पर, जिनमें से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों? अगर दो वेव्स को ना माने, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को, तो एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसकी यानी हर चीज का थ्योरेटिकल मॉडल ही ऐसे बना पाता है साइंस, उसी थ्योरेटिकल मॉडल की वजह से वो प्रैक्टिकल को मान लेता है। जैसे न्यूटन के जमाने में उसने कहा कि थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल कि आदमी जमीन से ट्रेवल करके चांद पर पहुंच जाए थ्रू रॉकेट। उस वक्त ये इनकंसीवेबल था कि ऐसा हो सकता है। दुनिया में कोई भी उस वक्त नहीं मान सकता था कि ऐसा हो भी कर। लेकिन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी को बताया न्यूटन, और फिर बात को वाकई बन गया। तो किसी भी चीज को जिसको मानता है साइंटिस्ट, उसी मानता है कि उसका वो थ्योरेटिकल मॉडल बना पाता है। जैसे एक साइंटिस्ट एडिंगटन ने लिखा है कि मैं जिस टेबल पर काम करता हूं वो टेबल टू फोल्ड टेबल यानी डबल टेबल। एक वो टेबल जो मुझे दिखाई देती है, जो सॉलिड है, जिस पर मेरी बुक्स रखी हुई हैं, तो एक टेबल हुआ है। दूसरा टेबल हुआ है कि वो सेम टेबल का एक और भी वर्जन है, सेम टेबल। वो क्या? वो टेबल है जिसमें मूविंग इलेक्ट्रॉन का मजबूर है, कोई इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहे हैं, उसी को मैं टेबल की शक्ल में देख रहा हूं। अब देखो, एक टेबल जो कि विजिबल टेबल जो है उसको तो हम कंसीव कर पाते हैं, लेकिन दूसरा टेबल जो है उसको हम कंसीव नहीं कर पाते, सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल ही बना पाते हैं उसका। और थ्योरेटिकल मॉडल वैसे हम मानने मजबूर थे कि है ऐसा, क्योंकि अगर वो न माने तो पहले टेबल का एग्जिस्टेंस भी डाउटफुल हो जाएगा। यानी अगर हम ये ना माने कि उसका यानी वो जो इलेक्ट्रॉन का मजबूआ जो है उसको ना माने, तो वो दूसरा टेबल भी हम नहीं मान सकते। तो थ्योरेटिकल मॉडल को मानकर ही हम ये मानते हैं कि एक मौजूद है। जैसे अब जमीन है, जमीन जो है कोई भी चीज ऊपर से डालते हैं तो नीचे गिरती है, ऊपर डालते नीचे गिरती है, तो हमने ये बनाया कि जमीन में ग्रेविटी है, जमीन एक थ्योरेटिकल मॉडल है, क्योंकि जमीन की जो ग्रेविटी है वो एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के दर्जे में है वो, और उसमें भी डाउट किया जाता है, क्वेश्चन किया जाते हैं क्या वाकई जमीन में ग्रेविटी है। इसीलिए जो इतना ज्यादा पॉपुलर हुई उसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन की, उसने प्रूव किया कि हर चीज रिलेटिव है, जिस चीज को हम रियल मानते हैं वो भी रिलेटिव है। तो सारी ही चीज हम सिर्फ इसलिए मानते हैं कि उसका थ्योरेटिकल मॉडल हम बना लेते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल बना लेते हैं तो उसका प्रैक्टिकल शेप भी हम मान लेते हैं। तो ये तो सारी साइंस, सारी नॉलेज हर चीज पर डाउट करना पड़ेगा, हद तक अपने एग्जिस्टेंस पर भी। मैं हूं ये क्या प्रूफ है, ये कोई प्रूफ, क्योंकि अगर बॉडी जो है इसको हम माने कि ये मैं हूं तो बॉडी तो फ्रिश होता रहता है, सुबह शाम खत्म होता रहता है, मैं मुझे खत्म हो जाना चाहिए। यानी बॉडी जो है वो मिलियन बिलियन सेल्स टूटते रहते हैं और चंद सालों में सारा बॉडी मेरा पेरिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो मैं कहां एग्जिस्ट कर रहा हूं, अगर मैं कहूं कि ये जो बॉडी है ये मैं हूं तो बॉडी तो खत्म होता रहता है, तो फिर भी मैं कहां हूं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था फिलोसफर्स के बीच में कि मैं कहां हूं, ये बॉडी जो है टूट फूट कर खत्म होता रहता है तो मैं कहां हूं, बॉडी खत्म हो रहा है फिर मेरी मेमोरी इंटैक्ट है। जो साइन मैंने किए थे आज से 20 साल पहले डॉक्यूमेंट पर, वो साइन आज भी वैलिड है, हालांकि वो जिस उंगलियों ने कलम पकड़ कर वो साइन किया था वो उंगलियां तो है नहीं, उंगलियां तो है नहीं। तो इंसान यानी मैं भी एक थ्योरेटिकल मॉडल की वजह से अपने आप को मानता हूं। इसलिए फिलोसफर से बड़ी बहस थी इस पर कि इसका क्या सबूत है कि मैं हूं, क्या प्रूफ है। बेसिकली इसीलिए था कि जिस इंसान को मैं कंसीव कर पाता हूँ वो इंसान तो कुछ है ही नहीं, वो तो टूट फूट खत्म हो रहा है, जो सेल्स है उसे लेस सेल्स खत्म हो रहे हैं। तो डिकार्टे ने कहा कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, तो जो मैं थिंक करता हूँ तो थिंकिंग जो है ये एक प्रोसेस जो मेरे अंदर होता है, थिंकिंग से मैं गेस करता हूँ कि मैं हूं, अगर मैं नहीं हूं तो कौन थिंक कर रहा है। यानी मेरा ये इनर एक्सपीरियंस है कि मैं सोच रहा हूं, तो अब मैं सोच रहा हूं, मैं थिंक कर रहा हूं, तो वो थिंक कौन कर रहा है, हाथ नहीं पाँव नहीं, तो वो थिंकिंग जो है वो मेरे एग्जिस्टेंस का कोई इनविजिबल पार्ट है, वो थिंक कर रहा है। तो उसे कहा आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट। देखिए ये भी थ्योरेटिकल मॉडल ही हुआ, अपना मॉडल उसे बनाया थिंकिंग पर बेस करती है, एक थ्योरेटिकल मॉडल। तो पैराडाइज के बारे में यही है कि थ्योरेटिकल मॉडल अगर उसका बन रहा है तो उसका प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस अपने आप में मानना पड़ेगा, अगर ये ना माने तो क्या होगा, हमको अग्नास्टिक बनना पड़ेगा। अग्नास्टिक हर चीज को शुभा करना, हर चीज को शुभा करना। बस एक लिखा एक आदमी ने कि अग्नास्टिक आदमी जो है अगर उसको डंडे से मारा जाए तो कहेगा मुझे चोट लगी, तो दूसरा आदमी कहेगा क्या प्रूफ है कि मैंने मारा तुमको, अगर तो अग्नास्टिक हो ये भी शक करो मैं मारे नहीं, तुम शक करते हो सोलर सिस्टम पर या ग्रेविटी पर, तो इसमें शक करो कि किसी ने तुमको मार दिया, तो क्या ऐसी थ्योरी चल सकती है, नहीं चल सकती है। तो इसमें यह मानना पड़ेगा कि थ्योरेटिकल मॉडल बन जाना ही अपने आप में प्रूफ है उसके रियल एग्जिस्टेंस का। अगर कोई चीज थ्योरेटिकली एग्जिस्ट कर रही है तो फिर मानना पड़ेगा तो प्रैक्टिकली वो एग्जिस्ट कर रही है, मैंने सारी साइंस खत्म हो जाएगी। अच्छा एक बात यह, दूसरी बात यह है कि पैराडाइज जैसी एक प्लेस एग्जिस्ट कर रही है, यानी एक ऐसी प्लेस जहां के डिसएडवांटेज ना हो, ना कोई मॉडिफाइड ना हो, या कोई भी शॉर्ट कमिंग ना हो, परफेक्ट हो, आइडियल हो। तो ये जो बिलीफ है, तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल मॉडल की बात नहीं है, बल्कि वो एक एतबार से हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। वो है ड्रीम के शक्ल में। ड्रीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंसान की जिंदगी में। हर आदमी ये जानता है, उसको एक्सपीरियंस होता है कि ड्रीम में वो एक एक वर्ल्ड को देखता है, एक घर है, एक गार्डन है, बहुत चीजों को वो ड्रीम में देखता है, और उस वक्त उसको एहसास होता है कि वो एक परफेक्ट वर्ल्ड में है, परफेक्ट गार्डन, परफेक्ट फ्लावर, परफेक्ट टेस्ट वाला खाना। ड्रीम में वो पैराडाइज को अपने परफेक्ट सूरत में देख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि पैराडाइज लिमिटलेस होगी, टाइम का कॉन्सेप्ट बहुत खत्म हो जाएगा। पैराडाइज के बारे में दो बातें बहुत बेसिक है। नंबर वन, पैराडाइज क्या है? पैराडाइज का मतलब है परफेक्ट वर्ल्ड, यानी आज जो प्रेजेंट वर्ल्ड हमारी है, इसी का परफेक्ट वर्जन। इसको अच्छे से समझना चाहिए क्या मतलब है पैराडाइज का। हम ऑलरेडी एक पैराडाइज ही में रहे। वो सब चीजें जो हमें बताया गया है पैराडाइज में अवेलेबल होंगी, जैसे हमारे डिजायर का पूरा होना, हमारी जो कुछ हम चाहते हैं वो अचीवेबल होना, एक दुनिया जहाँ के हमें पसंद की चीजें हों, जैसे यहाँ पर ग्रीनरी है, यहाँ पर ऑक्सीजन से भरी हुई हवा है, यहाँ सनलाइट है, जो कुछ हम चाहते हैं वो सब ऑलरेडी दुनिया मौजूद। सोशल लाइफ है, फ्रेंड है, आउटिंग है, शॉपिंग है, घर है, फर्नीचर है, सवारी है, जो कुछ जिन चीजों के बारे में बताया गया है कि वो पैराडाइज में मिलेंगे हमको, वो सब ऑलरेडी मिली हुई है। पैराडाइज कोई अननोन चीज नहीं है, खुद कुरान में भी यही है कि युद्ध खलोबुल जन्नत और रफालम, जो जन्नत मिलेगी उनको वो एक जानी पहचानी चीज होगी। इसे कुरान में कि बहुत भी मुतशाबह, वो पैराडाइज जो इसी के मुशाबे हो, इसी के सिमिलर हो। तो क्या प्रेजेंट वर्ल्ड में और पैराडाइज में सिर्फ ये फर्क है, प्रेजेंट वर्ल्ड इम्परफेक्ट वर्ल्ड है और पैराडाइज परफेक्ट वर्ल्ड, बस इतने ही डिफरेंस है। मतलब यहाँ बीमार होते हैं वहां बीमार नहीं होंगे, यहाँ बोर होते हैं वहां बोर नहीं होंगे, यहाँ एक्सीडेंट होता है वहां एक्सीडेंट नहीं होगा, या हम कुछ देर के बाद हमारी लगता है कि हमारी डिजायर की लिमिटेशन आ गई, आगे हम नहीं पूरा कर सकेंगे अपनी डिजायर को। तो सब कुछ जो हम चाहते हैं और वो सब कुछ इसी प्रेजेंट वर्ल्ड में ऑलरेडी मौजूद है। तो पैराडाइज का मतलब क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट वर्ल्ड का परफेक्ट मॉडल, परफेक्ट वर्जन, ये मतलब है। ऑलरेडी हम ये दुनिया का इम्परफेक्ट तौर पर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी का एक्सपीरियंस हमको परफेक्ट सूरत में होने लगेगा, वही पैराडाइज है। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो चीज जो चीज इम्परफेक्ट तौर पर अचीवेबल हो वो स्वयं इम्परफेक्ट तौर पर अचीवेबल है हो सकती है, दोनों में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर ये प्रूव हो जाए कि एक चीज इम्परफेक्ट तौर पर अवेलेबल है अचीवेबल है तो इसी से अपने आप में प्रूव होगा कि वो परफेक्ट तौर पर अचीवेबल है। मसलन कार बनी तो पहले जो कार बनी थी वो बहुत शोर करती थी, बहुत नाराज होता था उसके अंदर, तो लेकिन कार यानी नॉइज वाली कार का बन जाना अपने आप में इस बात का प्रूफ था कि नॉइजलेस कार भी बन सकती है। यानी अगर नॉइज वाली कार बन सकती है इसी से ये भी प्रूफ होगा कि नॉइजलेस कार भी बन सकती है जैसा कि बन गई। इसी तरह अगर गर्म मौसम जमीन पर आ सकता है इसी से अपने आप प्रूफ होगा कि ठंडा मौसम बन सकता है। तो देखो एक बात मैं ये कह रहा हूं, कोई भी आदमी ये मानने पर मजबूर है कि इम्परफेक्ट पैराडाइज तो ऑलरेडी हमें मिली हुई है, कौन इसमें डाउट कर सकता है, इसमें कोई डाउट करने का कोई कर ही नहीं सकता। इम्परफेक्ट पैराडाइज आज ही मिली हुई है तो लॉजिक ये कहती है कि जो चीज इम्परफेक्ट तौर पर अचीवेबल हो परफेक्ट तौर पर भी अचीवेबल होना उसका पॉसिबल बन जाता है। इम्परफेक्ट एग्जिस्टेंस ऑफ इम्परफेक्ट इज इटसेल्फ अ प्रूफ दैट परफेक्ट इज पॉसिबल, ये तो कोई लॉजिकल प्रूफ। मतलब इसका खुलासा यह है कि हमें ऑलरेडी प्रेजेंट वर्ल्ड की सूरत में इम्परफेक्ट पैराडाइज मिली हुई है। अब सिर्फ इतनी सी बात है कि ये इम्परफेक्ट वर्ल्ड एक दिन आएगा जब हमें परफेक्ट वर्ल्ड की सूरत में हमें अचीव हो जाएगी। ये तो लॉजिकली कोई लॉजिकल फ्लॉ नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि एक वर्ड ऑफ ड्रीम है, हर इंसान जो है ड्रीम का तजर्बा करता है, तो ड्रीम की सूरत में वो परफेक्ट वर्ल्ड या वो पैराडाइज इसी दुनिया में आदमी देख लेता है ड्रीम कर। मिसाल के तौर पर हम ये मानते हैं कि पैराडाइज में टाइम रिलेटिव बन जाएगा, ये बहुत दूर का सफर हम मिनटों सेकंडों में कर सकेंगे, तो हर आदमी जानता है कि ड्रीम में वो एक पूरी इवेंट को देख लेता है एक मिनट के फ्रैक्शन में, जबकि आती है और एक मिनट के फ्रैक्शन में पूरी स्टोरी उसको उसको दिखाई पड़ जाती है। हर आदमी का एक्सपीरियंस है। दूसरा एक्सपीरियंस ये है कि दूसरा एक्सपीरियंस है हमारे माइंड का सफर, यानी हमने अगर लंदन देखा है, हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो जब हम सोचते हैं तो विद इन सेकंड हमारा थॉट जो है ट्रेवल करके लंदन पहुंच जाता है, बल्कि एक सेकंड के फ्रैक्शन में, एक सेकंड के फ्रैक्शन में हमारा थॉट जो है ट्रेवल करके लंदन पहुंच जाता है। हम बिल्कुल देख लेते हैं उस बिल्डिंग को जो हमने वहां देखा था, उस एयरपोर्ट को जिसको देखा था वहां, उस इंसान को जिससे वहां मुलाकात हुई थी, एक मिनट के फ्रैक्शन में वो सारा हमारे सामने आ जाता। आज भी हमारा माइंड इस काबिल है कि वो टाइम और स्पेस को तोड़ करके पैराइज जैसे टाइमलेस और स्पेसलेस जगह का तजुर्बा कर सके। इस सिलसिले में दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है, कोई आदमी राइटफुली ये नहीं कह सकता पैराडाइज पैराडाइज को मैं इसलिए नहीं मानता कि वो मेरे माइंड में नहीं आती, कहने का राइट नहीं किसी। क्यों? अगर आदमी पैराडाइज तुम्हारे में स्टैंड ले, मैं पैराडाइज को उस वक्त मानूंगा जबकि वो मेरे माइंड में अपने माइंड से भी समझ आ जाए, वो खुद मेरा जो अपना मेंटल फ्रेमवर्क है उसके लास्ट में वो महसूस समझ पाऊं, ये कहने का राइट किसी को नहीं है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई ऐसा कहे पैराडाइज के बारे में तो यही बात उनको हर चीज के बारे में कहना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है कि दूसरी किसी भी चीज को सिंपली वो अपने मेंटल फ्रेमवर्क से समझ ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसको जो जो ह्यूमन नॉलेज ने स्टैंडर्ड्स सेट किया है, जो रैशनल स्टैंडर्ड या जो लॉजिकल बेस, उसका जो फ्रेमवर्क है, एक है मेरा अपना मेंटल फ्रेमवर्क, एक है मेरे माइंड से बाहर का साइंटिफिक फ्रेमवर्क, किसी भी चीज को मैं अपने मेंटल फ्रेमवर्क समझ नहीं सकता, इसलिए मुझे चीजों को साइंटिफिक फ्रेम के हिसाब से मानना या रिफ्यूज करना पड़ता है। मसलन मेरे अपने मेंटल फ्रेमवर्क में एक्सरेज नहीं आती, एक्सरेज को मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं उसको मानना है क्योंकि साइंटिफिक फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड नहीं बोले, वो मेरे पर्सनल फ्रेमवर्क में वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है तो नहीं है, मुझे मानना पड़ेगा कि अगर साइंटिफिक फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंडेबल है तो है, एग्जिस्ट करती है वो, इस प्रिंसिपल को भी मानना पड़ेगा, नहीं माना तो हर चीज का रिफ्यूज करना पड़ेगा, हर चीज का इनकार करना पड़ेगा। जैसे मैं एक बहुत ही सिंपल सिंपल था, सिंपल बहुत सिंपल, एक साधु था, वो बहुत शाकाहारी था, बहुत ज्यादा शाकाहारी, बहुत बोलता था लोगों के कितने लोग मीट खाते हो, एनिमल को मारते हो, सार्टर करते हो, जीव मारते हो, तो बहुत खराब लोग हो, देखो मैं सब्जी खाता हूं। तो एक आदमी ने उसे कहा कि तुम ये कह रहे हो सही नहीं है, इसलिए कि जीव हर चीज में है, तुम समझते कि जीव जो है वो गोट और शीप में है, हर चीज में जीव है, कोई भी चीज खाते हो, पानी पियो, दूध पियो, खाओ, सब्जी खाओ, उसमें मिलियन बिलियन जीव होते हैं, लाइफ, उस लाइफ को किल किए बगैर तो उसको खा नहीं सकते, तो कह नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं, तो कहा अच्छा ठीक है तुम पानी पीते हो कि नहीं पानी पीते? हाँ पीता हूँ। तो पानी का एक गिलास माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया, उसने कहा आओ देखो, जब माइक्रोस्कोप के नीचे उसे पानी को देखा तो मैं मिलियन मिलियन लाइफ उसमें मूव कर रही थी, तो उसने सोचा कि मैं इतने दिनों में कितने बिलियन जीव को मार चुका हूं, तो वो हार्ट फेल हो गया। तो देखो इस मिसाल को लो, अपने पर्सनल फ्रेमवर्क में उसको दिखाई पड़ता था कि जीव जो है लाइफ लाइफ सिर्फ एनिमल में है और सब्जी में और दूध में और पानी में नहीं है, लेकिन जब उसने साइंटिफिक फ्रेमवर्क, माइक्रोस्कोप क्या है, वो साइंटिफिक फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, जब उसने साइंटिफिक फ्रेमवर्क में देखा तो पता चला कि लाइफ तो हर चीज में है, पानी में भी है, मिल्क में भी है, सब्जी में भी है, फल में भी है, कोई चीज लाइफ से खाली नहीं है। तो इसी को मैं कह रहा हूं कि आदमी ऐसा नहीं कर सकता लॉजिकली, अपने मेंटल फ्रेमवर्क पर इंसिस्ट करे, मेरे मेंटल फ्रेमवर्क में जो चीज अंडरस्टैंडेबल होगी बस वही मानूंगा, बाकी नहीं मानूंगा। अगर ऐसा करे तो फिर उसको पानी पीना छोड़ना पड़ेगा, दूध पीना छोड़ना पड़ेगा, सब्जी खाना छोड़ना पड़ेगा, मतलब जी नहीं सकता वो। इसलिए उसको ये मानना पड़ेगा कि साइंटिफिक फ्रेमवर्क से जो चीज प्रूव हो जाए उसको मैं मानूंगा, चाहे मेरा मेंटल फ्रेमवर्क कुछ भी हो। साइंटिफिक फ्रेमवर्क इज द क्राइटेरियन, नॉट माई माइंड। इसको मानना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, लगते हैं बोलने अपने फ्रेमवर्क को लेकर, अलग उनका अपना फ्रेमवर्क जो है वो क्राइटेरियन थोड़ी है, क्राइटेरियन एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फ्रेमवर्क। एक बहुत बड़े नॉटेड आदमी थे फिलोसफी में, डॉक्टरेट थे वो, लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई। वो खुदा को नहीं मानते, अथीस्ट थे वो। उन्होंने कहा कि व्हाट क्राइटेरियन डू यू हैव टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो मैंने कहा कि द सेम क्राइटेरियन बाय विच यू कैन प्रूव एनीथिंग एल्स, बस वो उस पर चुप। क्योंकि वो जिस माइंडसेट से बोल रहे थे वो माइंडसेट वो था जो प्री आइंस्टीन एरा का था, जब एटम स्प्लिट नहीं हुआ था। प्री आइंस्टीन एरा में ये था कि हर चीज विजिबल समझ जाती थी, इनफैक्ट वही दिखाई दे। अगर कोई चीज फैक्चुअल तौर पर है तो वो दिखाई देगी, और न दिखाई दे तो वो है भी नहीं, तो एग्जिस्टेंस भी कोई इसका नहीं है। तो उस माइंड सेट से वो बोल रहे थे, वो खुदा चूंकि दिखाई नहीं देता इसलिए वो है भी नहीं। तो मैंने उनको याद दिलाया कि ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो एनाक्रोनिज्म है। एटम के स्प्लिट होने से पहले, आइंस्टीन से पहले जो साइंटिफिक फ्रेमवर्क था वो ये था कि हर चीज कंसिस्ट करती है एटम पर। एटम जो है ठोस चीज है, सॉलिड चीज है, ये सर चीज सॉलिड है। तो इससे जो लॉजिक बनी थी वही बाल लॉजिक बनी थी, वही चीज एग्जिस्ट करती है जो दिखाई दे, अगर दिखाई नहीं तो एग्जिस्ट भी नहीं करती वो। लेकिन जब एटम जो है स्प्लिट हो गया, एटम तो इलेक्ट्रॉन का नाम है, और इलेक्ट्रॉन जो विजिबल नहीं थे जैसे, क्योंकि वो तो एक वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है कि वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेव्स ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि प्रोबेबली देर आर वेव्स, ये मतलब हुआ। तो मैंने कहा कि इसके बाद लॉजिक बिल्कुल बदल चुकी है, पहले सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ ही का नाम प्रूफ हुआ कर रहा था, अब इन्फ्लुएंशियल आर्गुमेंट का नाम भी वैलिड आर्गुमेंट हो चुका है। अब यहां पर देखो, उन्होंने जो उनका जो कंटेंशन था, उनका कंटेंशन बेस करता था उनके अपने फ्रेमवर्क पर जो बाहर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, उनसे बाहर जो साइंटिफिक फ्रेमवर्क एग्जिस्ट कर रहा था वो बिल्कुल अलग दूसरा हो चुका था, वो डिफरेंट हो चुका था। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर आप दूसरी चीजों को लोग मानते हैं कि इन्फ्रेंशियल आर्गुमेंट वैलिड है वो, तो फिर इन्फ्रेंशियल आर्गुमेंट आर्गुमेंट को वैलिड मानने के बाद तो खुदा भी पर जो आर्गुमेंट है वो भी वैलिड हो जाता है, क्योंकि तो यहाँ भी इन्फ्रेंशियल आर्गुमेंट है। अब तो हर चीज इन्फ्रेंशियल आर्गुमेंट ही जानी जाती है, मानी जाती है। तो आदमी अपने फ्रेमवर्क से रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको राइट नहीं है, फिर तो अपने आप उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, मैं भी नहीं हूं, मेरा भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, तो ऐसा कैसे कोई कह सकता है? ये तो नहीं कोई कह सकता कि खुद अपना ही इनकार कर दे। तो हर चीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ को साइंटिफिक फ्रेमवर्क की बुनियाद पर मानना पड़ता है, ना कि बहुत अपने माइंड सेट की बराबर। तो जब ऐसा है तो कोई शख्स ये राइट ही नहीं रखता कि ये कहे कि साहब बिम्बी समय में तो नहीं आता, मेरे माइंड में तो ये बात नहीं बैठती। अब तो अपने माइंड सेट की बात ही नहीं रही, अब तो साइंटिफिक माइंड सेट की बात हो गई।